संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का छठा श्लोक कहते हैं।
एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं प्रश्नस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा।
अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। व्याख्या। एतद् योनीनि भूतानि, टिप्पणी। एतद् योनीनि भूतानि पदों का अर्थ है एते अपरा परे योनि कारणे येषां तानि, अर्थात अपरा और परा ये दोनों प्रकृतियां जिनकी कारण है ऐसे संपूर्ण प्राणी। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई है कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं, वे सब प्रकृति के हैं, और उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वह मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति और अपना अंश कहा है। सर्वाणि त्युपधारय, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है। टिप्पणी। इसमें एक विचित्र बात है कि संबंध केवल क्षेत्रज्ञ ने माना है, क्षेत्र ने नहीं। यदि यह अपना संबंध न माने तो इसका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुनर्जन्म का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात उत्पन्न करने वाला और लीन करने वाला हूँ। प्रभवः का तात्पर्य है कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। सदैक्षत बहुस्याम प्रजा येति। टिप्पणी। जीवों के द्वारा किए हुए अनादि काल के कर्म जीवों के प्रलय काल में लीन होने पर जब परिपक्व होते हैं अर्थात फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उससे यानी प्रलय का समय समाप्त होने पर सर्ग के आदि में भगवान का संकल्प होता है, और उसी संकल्प से शरीरों की उत्पत्ति होती है। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण हैं। प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है, उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है, और जैसे सोने के यावन मात्र आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है, ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। कृत्स्नस्य जगतः पदों में भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ का यानी अपरा प्रकृति का प्रभव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन यानी परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, क्योंकि वह तो नित्य तत्व है, नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः, जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं, गच्छति इति जगत। पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है, इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वथा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब वह जड़ के यानी शरीर के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है, इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभव तथा प्रलय बताया है। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए, तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान ने कृत्स्नस्य जगतः पदों से अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। टिप्पणी, अपरा प्रकृति और भगवान में तो कार्य कारण का संबंध है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान का कार्य है, परंतु परा प्रकृति और भगवान में कार्य कारण का संबंध नहीं है। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए, तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान ने कृत्स्नस्य जगतः पदों से अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। टिप्पणी, अपरा प्रकृति और भगवान में तो कार्य कारण का संबंध है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान का कार्य है, परंतु परा प्रकृति और भगवान में कार्य कारण का संबंध नहीं है, क्योंकि परा प्रकृति यानी जीव भगवान का अंश है, कार्य नहीं। इसलिए अंश अंशी की दृष्टि से ही भगवान जीव के कारण कहे गए हैं, कार्य कारण की दृष्टि से नहीं। अतः संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी लिए जाएंगे। अगर केवल जड़ को लिया जाएगा तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ यह कहना नहीं बन सकेगा, और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी। कारण कि आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, तो यहाँ जानना अथवा न जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा न जानना होता ही नहीं। इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को ही नहीं चेतन को भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। इसलिए अगर वहाँ जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाए, तो जगत को यानी जड़ संसार को असत्य मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांती भी आसुरी संपदा वालों में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसे ही आठवें अध्याय के 26वें श्लोक में आये शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः पदों में जगत शब्द केवल जड़ का ही वाचक माने तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गति का क्या तात्पर्य होगा। गति तो चेतन की ही होती है, जड़ से तादात्म्य करने के कारण ही चेतन को जगत नाम से कहा गया है। इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मता करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है तब यह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह आया है।